الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہفتے کا دن ہے، اور ہفتے کے دن ہمارے ہاں فہم التصوف جو خانقاہوں کے لیے خصوصی طور پر لکھی گئی ہے اس کتاب کی تعلیم ہوتی ہے. گزشتہ ہفتے جو اس میں سے تعلیم کی بات چل رہی تھی وہ بیعت کے وقت تعلیم کی تھی. تو وہ جو ہے نا بیعت کے وقت کی تعلیم مطلب کر لی گئی ہے. تو اب ایک اس میں ایک خصوصی اصطلاح ہے، اس کی تشریح انشاءاللہ آج کی جائے گی. وہ ہے فنا فی الشیخ ہونا. اصل میں مقصد اور ذریعہ، اس کی اگر پہچان ہو جائے تو پھر یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ مقصد کیا ہے اور ذریعہ کیا ہے. مقصد ہمیشہ بدستور قائم رہتا ہے اور ذرائع اس کے لیے بدلتے رہتے ہیں. جیسے لاہور شہر ہے، یہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، عرصہ دراز سے لاہور ادھری ہے، یہ اپنی جگہ تبدیل نہیں کر رہا، لیکن لاہور پہنچنے کے لیے جو رستے ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں. کسی وقت موٹر وے کا وجود بھی نہیں تھا، اب موٹر وے پہ اچھا خاصا ٹریفک ہوتا ہے لاہور جانے کے لیے. پرانے بعض رستے ختم ہو گئے، نئے راستے تعمیر ہو گئے، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو جو ذرائع ہوتے ہیں اس میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ بعض دفعہ ناگزیر ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر اگر وہ مقصد پورا نہیں ہوتا تو اس ذریعے سے چمٹنا جس سے مقصد حاصل نہ ہو یہ جمود کہلاتا ہے، یہ جمود کہلاتا ہے. اور ظاہر ہے مقصدیت اور جمود یہ آپس میں ضد ہے. تو یہ تین اصطلاحات ہیں جو کہ سبحان اللہ ذریعے ہیں، اور اس کے ذریعے سے انسان اپنے مقصود کو، یعنی اللہ کا بننا، اللہ کا ہو جانا، یہ حاصل کر لیتا ہے. اس میں پہلی اصطلاح فنا فی الشیخ ہونا ہے، یعنی شیخ کی بات کے سامنے سرنڈر کرنا اور اس کی بات کو اپنی بات سے اہم سمجھنا. میں اس کو اکثر آج کل کے سائنٹیفک لینگویج کے حساب سے نیوکلیشن پروسیس کے مترادف سمجھتا ہوں. یعنی بعض دفعہ کسی چیز کو سٹارٹ کرنے کے لیے کوئی نقطہ درکار ہوتا ہے، مطلب یہ کہ وہاں سے کام شروع ہوتا ہے. مثلاً جیسے یہ صحرائی علاقوں میں کوئی پتھر پڑا ہو تو اس کے ساتھ تھوڑی سی ریت جمع ہو جاتی ہے آندھی کے وقت، پھر وہ جو ریت جو بن جاتا ہے ڈیر سا بن جاتا ہے، وہ ڈیر ریکارڈ بن جاتا ہے اور ریت کے لیے، پھر اس کے ساتھ مزید ریت تو ڈیر بڑھ جاتا ہے، پھر بڑھتا ہے بڑھتا ہے ٹیلا بن جاتا ہے. ہاں جی، تو اس طریقے سے وہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. تو یہ گویا کہ انسان کا جو نفس ہے یہ پابندی نہیں برداشت کرتا، انسان کا جو نفس ہے یہ پابندی برداشت نہیں کر سکتا. دوسرے لفظوں میں اگر میں کہوں تو جیسے پانی ہوتا ہے، تو پانی کی فطرت یہ ہے کہ یہ فلو کرتی ہے ڈاؤن فال، مطلب یہ نا جو ڈلوان کی طرف پانی بہتا ہے. اس بہنے کو روکنے کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ اس کے لیے رکاوٹ کھڑی کی جائے. ہاں جی، تو یہ رکاوٹ جو ہوتا ہے وہ پانی کو کنٹین کرتا ہے، اس کو کنٹینر بن جاتا ہے. روایت میں کہ زمزم کا پانی جب ابل پڑا تو جب چل پڑا تو حضرت حاجرہ بی بی نے اسے فرمایا زم 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 زم. ہاں جی، یعنی گویا کہ رک جا رک جا رک جا رک جا، یہ زمزم کا پانی کا نام اسی لیے زمزم ہو گیا. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر یہ زمزم کے پانی کو اس طرح روکا نہ جاتا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ماشاءاللہ ظہور میں آ گئی تھی کہ یہ پانی پوری دنیا میں پہنچ جاتا. ہاں جی اب بھی پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے لیکن کنٹینروں کے ذریعے سے. ہاں جی اور ویسے پھر وہ ویسے پہنچ جاتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کو روکنے کے لیے بھی کنٹینر کی ضرورت ہوتی ہے, ورنہ وہ پانی ضائع ہو جائے گا کیونکہ اس نے تو جانا ہے. تو اس طرح ہمارے نفس جو ہے یہ پابندی برداشت نہیں کرتا, نتیجتاً نفس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں جو کام کر, کیونکہ نفس کی جو رکاوٹ ہے اور ضد جو ہے اس کا وہ تقویٰ ہے. یہ نفس اگر برائی چاہتا ہے اور آپ اس کی آگے بند مان لیں تو یہ تقویٰ بن جاتا ہے. آخر مطلب یہ ہے کہ جو دریا آتا ہے تو دریا تو اس کے سامنے تو جو بھی آئے گا اس کو بہا کے لے جائے گا, لیکن جب آپ بند باندھیں اس کے آگے تو وہی مطلب بجلی پیدا کرنے کا اور اپاشی کا اور تمام چیزوں کا ذریعہ بن جائے گا. تو اسی طریقے سے ہمارے جو نفس کے آگے جو رکاوٹ بننا ہوتا ہے تاکہ اس سے مفید کام ہم لے لیں اور تقویٰ اختیار کر لے, اس کے لیے بند باندھنا ضروری ہے. تو یہ بند کون باندھے گا؟ اس کے لیے کچھ شروع تو کرنا ہوگا نا. تو اس کی جو ابتدا ہے وہ شیخ سے ہوتی ہے. جب آپ حضرات ماشاءاللہ جو حضرات بیعت ہیں وہ تو اس چیز کو بالکل جانتے ہوں گے ماشاءاللہ, ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سمجھنے کے لیے کہ جس وقت انسان بیعت ہوتا ہے صحیح معنوں میں, یعنی واقعی بیعت ہوتا ہے, تو اس کی زندگی میں ایک واضح تبدیلی آتی ہے. اور واضح تبدیلی کیا ہے کہ اب وہ اپنے آپ کو آزاد نہیں پاتا بلکہ اپنے آپ کو پابند پاتا ہے کہ اب میں نے کسی کی بات ماننی ہے, خود اپنی مرضی نہیں کرنی. مطلب یہ بات کم از کم اس کو جو ہے نا پہلے دفعہ میں جو ہے نا مطلب یہ حاصل ہو جاتی ہے, ایک بات یہ حاصل ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب چونکہ اپنے شیخ کی بات کو اپنی بات سے بہتر سمجھتا ہے, لہٰذا اس کو جو بھی فائدہ ہوتا ہے وہ شیخ کے کھاتے میں ڈالتا ہے. کہتے ہیں شیخ کی برکت ہے, سلسلے کی برکت. ہاں جی وہ گویا کہ اس کی نظر اپنے آپ سے ہٹ جاتی ہے. اب یہ دو کتنے بڑے فائدے اس سے حاصل ہو گئے. پہلے جو بات حاصل ہو گئی کہ انسان ماننا شروع کر لے تو یہ کتنی بڑی بات ہے, کیونکہ اس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا. آخر حدیث شریف میں نفس کو قابو کرنے کے لیے فرمایا گیا نا, عقل مند وہ ہے جو نفس کو قابو کرے اور آخرت کے لیے کام کر لے, یہ فرمایا گیا. تو نفس کو قابو کرنے کا وہ ہے کہ پہلا قدم ہی یہی ہوتا ہے کہ اپنے شیخ کی بات مانے, اپنے شیخ کی بات مانے, اپنی بات نہ مانے. یہ جو تقلید ہے اس کی بھی بنیادی ریزن یہی ہے. جو تقلید ہے مطلب جس کو ہم کہتے ہیں پھر کسی ایک امام کی جو تقلید کرتے ہیں اس میں بھی اپنے نفس کے آگے بند مانتے ہیں, گویا کہ نفس کو قابو کیا جاتا ہے تاکہ وہ جو آزاد نہ رہے اور وہ کسی کی بات مانے. ہاں جی تو یہ جو ہے نا یہ ماننا سیکھنا اور اپنے سے نظر ہٹ جانا, یہ بیعت کے بہت بڑے فوائد ہیں جو فوراً حاصل ہو جاتے ہیں. ابھی بے شک اس کی مزید تربیت نہ ہوئی ہو لیکن کم از کم جو یہ دو چیزیں حاصل ہو جائے یہ بھی بہت بڑی کامیابی کا پیش خیمہ ہے. تو اب اس میں جو ہے نا کمال اس وقت آتا ہے جب فنا فی شیخ ہو جاتا ہے. اگر ابتدا میں اتنا کمال ہے تو فنا انتہا میں کتنا کمال ہوگا اس کا. اگر ابتدا میں اس کا اتنا کمال ہے کہ یہ دو چیزیں اس کو فوراً حاصل ہو جاتی تو انتہا میں اس کا اتنا کمال, تو فنا فی شیخ جو ہے فنا فی شیخ ہونا یہ ایک اصطلاح ہے اور اس اصطلاح کے اندر بہت کچھ ہے. عزروی حدیث حب الدنیا رأس کل خطیہ رواہ البیہقی فی شعبہ بإسناد الحسن, دنیا کی محبت ساری خطاؤں کی جڑ ہے, یہی دنیا کی محبت ہے جس کی وجہ سے سب روحانی بیماری ہے, اور یہی دنیا کی محبت ہے جو اس کے علاج میں رکاوٹ ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت ساری سعادتوں کا منبع ہے, جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے والذین آمنوا اشد حب للہ, اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے, سورہ البقر 165 نمبر آیت. لیکن کیا بات ہے کہ ایمان کے باوجود اللہ تعالیٰ کی محبت کا وہ مظاہرہ نظر نہیں آتا جو ہونا چاہیے. چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وراء الورا ہے اس لیے طبیعت قریبی چیزوں کے اثر کی وجہ سے اس کا اثر نہیں لیتی, جیسے کہ مد جزر چاند کی وجہ سے زیادہ ہے اور سورج کی وجہ سے کم, حالانکہ چاند سورج کا کروڑواں حصہ ہے, وجہ صرف زاب ظاہر ہے کہ وہ زمین کے قریب ہے. آخر قرآن پاک میں بھی ہے نا कल्ला बल तुहिब्बून अलआजिलता व तजरून अलआखिरा, कल्ला बल तुहिब्बून अलआजिलता व तजरून अलआखिरा, हरगिज़ नहीं बल्कि तुम जो करीबी चीज़ें उसको पसंद करते हो, जो बाकी रहने आबाद में आने वाली चीज़ें उसको छोड़ते हो। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हमारी गोए कि यानी फितरत की माशाल्लाह यानी बेहतरीन तशरीह फरमाई, हमारी फितरत ऐसी है। अब जब फितरत ऐसी है तो क्या अंग्रेज को कहते हैं डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। तो इस वजह से जो आजिला है उसका इलाज है, आजिला का इलाज क्या है? आजिला है तो पीर सबसे ज़्यादा करीब होता है ना, क्योंकि सामने होता है ना, अल्लाह ताला की ज़ात तो वरा है। मतलब ज़ाहिर वो तो आप माशाल्लाह कुछ तरक्की कर लेंगे और उन चीज़ों को हासिल कर लेंगे, तो फिर असल तो यही है, पहुँचना तो उधर है, लेकिन इंसान की फितरत यह है कि वो करीबी चीज़ों से असर लेता है, तो उसका क्या किया जाए? तो इसके लिए फिर जो है ना, वो यही तरीका है कि उसको उसी तरीके से ही पहले कंट्रोल किया जाए जो कि सबसे ज़्यादा करीबी तरीका है। तो शेख जो है ना वो सबसे ज़्यादा करीब होता है, यानी इसके असर से हम इस दुनिया की असर को काट सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी चीज़ों से इंसान शेख की बात की वजह से रुक जाते हैं। है मतलब हम देखते हैं बड़ी बड़ी चीज़ों से बाज़ दफ़ा माशाल्लाह शेख की बात मानने की वजह से रुक जाता है, वरना कुरान हदीस में तो ये चीज़ें पहले से होती हैं। मुझे बताओ अगर शेख किसी को कह दे कि झूठ न बोलो, तो क्या कोई नई बात की है? नई बात तो नहीं की है, ये बात तो कुरान में पहले से मौजूद है, हदीस शरीफ में पहले से मौजूद है, तो इसमें शेख की बात का इंतज़ार करने की ज़रूरत थी? ज़रूरत तो थी नहीं, बल्कि बहुत सारे उलूम तो इंसान को पहले से हासिल होते हैं, अनपढ़ लोगों को भी हासिल होते हैं, अनपढ़ लोगों को भी हासिल होते हैं, लेकिन अमल नहीं होता। अमल उलमा से भी बाज़दफ़ा नहीं होता, अनपढ़ लोगों की बात क्या उलमा से भी बाज़दफ़ा। मिसाल के तौर पर झूठ बोलना, धोखा करना, गीबत करना, हाँ या मतलब जो है ना वो इस किस्म की जो हसद करना है, बोझ कर रखना है, ये तमाम चीज़ें क्या मालूम नहीं हम लोगों को? कौन सा मुसलमान होगा जो झूठ बोलने को जायज़ समझता होगा? कोई मुसलमान ऐसा होगा? कोई मुसलमान ऐसा होगा जो जिना को जायज़ समझता होगा, बदनजरी को जायज़ समझता होगा? ऐसे तो कोई मुसलमान कम अज़ कम मेरे तसव्वुर में नहीं है, लेकिन मुसलमानों में झूठे भी हैं, हाँ जिनाकार भी हैं, शराबी भी हैं, धोखाबाज भी हैं, ये सारे किस्म के लोग मौजूद हैं। तो इसका मतलब यह है कि इसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ इलम भी काफ़ी नहीं है, हाँ सिर्फ इलम भी काफ़ी नहीं है, कोई और चीज़ है। अब बात यह है कि अगर मिसाल के तौर पर कोई किसी के साथ किसी बैत हो जाए और उसके बैत की वजह से मिसाल के तौर पर वो चूँकि शेख होता है ना, शेख वो समझदार भी होता है, उसके साथ मोहब्बत भी होती है। दो बातें होती हैं, समझदार भी होता है, तजुर्बा होता है, तजुर्बाकार होता है, उसको पता होता है कि मैं इसके ऊपर कितना बोझ डाल सकता हूँ इस वक्त, वो सारा बोझ एक वक्त में नहीं डालता। मसलन ये जो जिक्र है, पहली दफ़ा जो जिक्र है वो कितना देते हैं? वो जो 10-15 मिनट में हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते, अब अखीर में जब पता चलते ओह ये तो मैं पहले कभी सोच भी नहीं सकता था, अगर पहले दिन में वो जिक्र दिया जाता क्या वो कर सकता? देखो ना कर सकता। तो इसका मतलब है कि एक तो तदरीज के साथ चलता है, तदरीज के साथ चलता है, और दूसरी बात ये समझदारी, और साथ साथ ये कि मोहब्बत भी उसके साथ होती है। अब मोहब्बत की वजह से उसकी एक बात मान ली, उस एक बात मानने की वजह से उसमें इस्तेदाद दूसरी बात के मानने की पैदा हो गई। 100-100 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह हक और अल्लाह 1 महीना करने से उसमें इस्तेदाद 200 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, 200 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, 200 मरतबा हक और 100 मरतबा अल्लाह की पैदा हो गई। अब अगली दफ़ा जब ये जिक्र दे दिया वो भी कर लिया, इसके बाद मजीद स्पेस के बाद मजीद, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गोया कि जड़ पकड़ने वाली बात है। यानी किसी शेख से बैत होने का मतलब क्या होता है कि अब ये माशाल्लाह अब उसने रास्ता पा लिया, अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा अपने रास्ते पर, इंशाल्लाह अपने मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर बात आ रही है आप सल्लम ज़मानन दूर है, लेकिन चूंकि आप सल्लम की तालीमात और सीरत मौजूद है इसलिए इसका असर तबान ज़्यादा है, और शेख चूंकि सामने होता है इसलिए तबान इसका असर काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे मैंने मिसाल दी चांद की, चांद सूरज का करोड़वां हिस्सा है लेकिन उसका असर जो है ना वो जमीन के समंदर पर ज्यादा है बमुकाबला सूरज के, हालांकि सूरज बहुत ज्यादा है उससे, चूंकि सूरज जरा दूर है, सूरज दूर है तो दूर होने की वजह से उसका असर कम हो जाता है। अब हम अगर इस असर को तरबियत के लिए इस्तेमाल कर ले तो तरबियत बहुत आसान हो जाती है, बहुत आसान। बस असल मकसूद तो अल्लाह की रजा है, अल्लाह ताला की रजा है। ये मैंने आपको ये बातें बताऊं, यकीन जानी है, ये बहुत सारे तमाम चीज़ों की ऑब्जर्वेशन के बाद ये चीज़ आई है, और इश्कालात जो लोगों को होते हैं उन इश्कालात के बाद ये चीज़ आई है, जिसका वाहिद रास्ता इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उसको सही मानों में अपनाने के लिए अपने आप को शेख की तरबियत में देना होता है। आगे दो चीज़ों की ज़रूरत रहती है, एक तो शेख के साथ मुनासिबत, जो शेख को चुनने से पहले होता है, और दूसरा फिर उसका कलबन कालेबन मुनासिब कुर्ब, कलबन कालेबन मुनासिब कुर्ब। ये कलबन जो कुर्ब है वो फनाइत कहलाती है, ये कलबन जो कुर्ब है ये फनाइत कहलाती है, यानी ये दिल के इतने करीब हो जाए कि अपनी बात उसके सामने भूल जाए और उसकी बात याद रहे। आप यकीन कीजिए, हम अपने शेख के पास जब जाते थे, अपने हजरत के पास, अल्लाह ताला हजरत की दर्जात बहुत बुलंद फरमाए, मैं अपने साथियों से क्या करता, भाई जो कुछ मुझे कहना है या जो मुझसे सुनना है अभी अभी कर लो, क्योंकि उधर जाकर मुझसे कुछ पूछोगे तो ऐन मुमकिन है कि मैं आपको सही बात ना बता सकूं, सेंसेस प्रॉपर ना होने की वजह से। अब देखो ना, एक शख्स किसी एक चीज़ की तरफ मुतवज्जे है और आपने उससे कुछ पूछ लिया, चूंकि पूरी तरह मुतवज्जे आपकी तरफ से नहीं हुए तो लिहाजा मुमकिन आपकी बात पूरी समझे ही ना, वो जिस तरह मुतवज्जे उसी की बात समझेगा ना। आपकी तरफ अगर पूरी मुतवज्जे पूरा मुतवज्जे नहीं है तो शायद आपकी बात पूरी समझे नहीं, और अगर समझ ले तो मुमकिन है पूरी बात आपसे कर ना सके, जो बताना चाहते हैं वो आपसे कर ना सके। तो हजरत के साथ एक दफा बैठे हुए थे, सामने बैठे हुए थे, हजरत ने किसी और से बात करनी चाहिए, जाने बात, मुझे थोड़ा सा ख्याल हो गया कि शायद मुझसे बात कर रहे हैं, और वो अचानक इतना ऐसा था कि मैं बिल्कुल हिल गया इस तरह। हाँ जी, हिल गया तो हजरत मुस्कराए, पर मैं इन दीवानों के साथ हम क्या करें, इन दीवानों के साथ हम क्या करें। मकसद मेरा यह है कि वो इतहाई दर्जे की तवज्जो मतलब होती है, जिसकी वजह से इंसान वहां से तो लेना शुरू कर लेता है जल्दी, लेकिन बाकी जगहों से कमी हो जाती है ना, बाकी जगहों से कमी हो जाती है। तो होने भी मुफ्ती के लिए तो यही जरूरी ना कि ज्यादा उधर ही से ले ले, बाकी जगहों से मतलब कम हो जाए, ताकि जो है ना मतलब सिर्फ एक सुई, मतलब एक सुई पाने के लिए जो है ना एक तरफ तो जो ज्यादा जरूरी होती है। अच्छा, तो यहां है कि ये कलबन जो कुर्ब है वो फनाइत कहलाती है, यानी दिल के इतने करीब हो जाए कि अपनी बात उसके सामने भूल जाए और उसकी बात याद रहे। इस हालत को फनाफ शेख कहते हैं। कालिबन कुरब से मरा शेख की सोहबत है बशर्ते इजाजत शेख, और दोनों बड़े काम की चीजें हैं। शेख की सोहबत, सोहबत सालहीन का नचोड़े, शेख की सोहबत, सोहबत सालहीन के नचोड़े, और शेख के अंदर फना होना ये फनाफिल्ला होने का एक जरिया है, एक जरिया है। तो दोनों बहुत ऊंची नस्बतें हैं, ठीक है ना। हदीस शरीफ में आता है कि बुरी सोहबत से खलवत अच्छी है, सुभान अल्लाह, बुरी सोहबत से खलवत अच्छी, और अच्छी सोहबत खलवत से अच्छी है। फिर शेख से किसी की सोहबत मुरीद के लिए क्या अच्छी होगी। हाँ जी, यानी फिर शेख की सोहबत जो है ना मुरीद के लिए क्या अच्छी हो। फना फिर शेख जितना कभी होगा, अगर शेख सही है तो उतना ही इत्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा हासिल होगी, और उसमें सालिक इतना ही फना होगा, और ये फना जितनी ज्यादा हासिल होगी उतना ही सालिक फनाफिल्ला का मुकाम हासिल करेगा। ये जितना फनाफिर शेख होगा उतनी ज्यादा फनाफिर रसूल होगा, क्योंकि जब शेख को सुन्नत पे चलता हुआ देखेगा तो सुन्नत की इत्तबा वो अपने शेख से हासिल कर लेगा। और आप सब घर का मल्ला के लिए था, आप सल्लम का हर काम अल्लाह के लिए था, तो आप सल्लम के इतबा से अल्लाह में फनाइत फनाफिल्ला होना सीख लेगा, जैसे साहबा ने सीखा था, जैसे साहबा ने सीखा था। फनाफ शेख से फनाफ रसूल हो, उससे फिर फनाफिल्ला हासिल हो सकता है, क्योंकि असल मकसूद अल्लाह ताला की रजा है जो इतबा सुन्नत में मुजमर है, اور اس کے لیے جو موانع ہیں وہ فنا فی الشیخ سے دور ہو سکتے ہیں. آگے جا کر تھوڑا سا کلام ہے اور وہ کلام ماشاءاللہ بہت ہی مفید کلام ہے, وہ میں آپ کو اس نصیب سناتا ہوں. شاید پہلے آپ نے سنا بھی ہوگا لیکن یہ تو نہیں میرا موبائل جو ہے نا یہ نیچے, لیکن آج اس تشریح کے ساتھ جب سنیں گے تو کچھ سمجھ میں بھی آئے گا انشاءاللہ.
Connected.
ماشاءاللہ خود ہی مان گئے.
عنوان ہے فنا فی الشیخ. فنا فی الشیخ کا رتبہ اگر ہو, فنا فی الشیخ کا رتبہ اگر ہو تو شیخ کے قلب کا تجھ پر اثر ہو, تو شیخ کے قلب کا تجھ پر اثر ہو, پھر اس کا قلب تیرا رہنما ہو, پھر اس کا قلب تیرا رہنما ہو, نہ یوں دنیا میں تو پھر در بدل ہو, فنا فی الشیخ کا رتبہ اگر ہو.
یعنی اگر آپ کا دل اس کی طرف متوجہ ہے تو ظاہر اس کے دل میں جو کچھ ہوگا وہ پھر آپ کو ملے گا, تو اس کا دل تیرا رہنما بن جائے گا اور تو یکسوئی کے ساتھ اپنے راستے کو بہت آسانی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ قطع کرے گا. مجھے خود پتہ ہے, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اللہ پاک نے یہ منظر دکھایا. میں نے خواب دیکھا, حضرت سے میں بیعت ہو گیا تھا اس وقت. خواب دیکھتا ہوں کہ حضرت موجود ہیں اور حضرت کے ہاتھ میں آئینہ ہے, حضرت کے ہاتھ میں آئینہ ہے, تو حضرت نے آئینہ میرے طرف کر دیا, تو اس آئینہ میں مدینہ منورہ کا راستہ نظر آیا. بالکل ایسے کلیئر کلیئر بات ہے, آئینہ میں مدینہ منورہ کا راستہ نظر آیا. پھر وہ راستہ جیسے کوئی راستے پہ چل رہا ہو اور وہ راستہ قریب ہو رہا ہوتا ہے, تو اس طرح آئینے میں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ راستہ میرے قریب ہو رہا ہے, جیسے گوئے کہ ہم چل رہے ہیں. پھر وہ آئینہ جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک گاڑی کا ونڈ سکرین میں تبدیل ہو گیا اور بہت تیزی کے ساتھ ہماری گاڑی چل رہی ہے مدینہ منورہ کے راستے پہ, اور پھر مدینہ منورہ ہم پہنچ جاتے ہیں الحمدللہ. مدینہ منورہ جب پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت گاڑی غائب ہو جاتی ہے, گاڑی غائب ہو جاتی ہے. خواب میں تو سب کچھ ممکن ہے, گاڑی غائب ہو جاتی ہے اور میں پیدل وہ روزہ اقدس کے سامنے ماشاءاللہ جا رہا ہوں. وہ پورا منظر الحمدللہ ابھی بھی میرے آنکھوں کے سامنے ہے کہ وہ جن مطلب وہ روزہ اقدس, اتنے میں میں کسی سے بات کر رہا ہوں تو اس کو میں کہتا ہوں خانہ کعبہ بھی ادھر ہی ہے, خانہ کعبہ بھی ادھر ہی ہے. ویسے لوگوں کو دور نظر آتا ہے, ये अब अंदाजा कर ले, इसी ख्वाब में तीनों चीजें अल्लाह ने मुझे दिखाई। पहला वाला फनाफे शेख होना, दूसरा वाला फनाफे रसूल होना, मदीना मुनव्वर पहुंच गए ना तो फनाफे रसूल होने ना, और तीसरा खाना काबा का उधर होना, ये फनाफे अल्लाह होने। बस में मारी है नहीं यार, तीनों चीजें बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ख्वाब हजरत को सुनाया, हजरत बहुत खुश हुए। हजरत ने फरमाया कि दो नस्बतें होती हैं, एक नस्बत इलाही होता है, एक नस्बत नबवी होता है। यानी अल्लाह की मोहब्बत की वजह से आप सल्लम की बात मानना, इत्तेआत करना, ये भी एक नस्बत है, और आप सल्लम की इत्तबा के ज़रिए से अल्लाह ताला की बात तक पहुंचना, ये भी एक नस्बत। बात दोनों में एक ही है लेकिन तरीके दोनों के अलग अलग है। और आप फरमाए आप पर नस्बत नबवी गालिब है, समझ में आप पर नस्बत नबी गालिब है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो बात है, अगर वाकईतन अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल वही चीज़ है, फनाफे शेख, फनाफे रसूल और फनाफे अल्लाह। अब जिसका अल्लाह अपने शेख के साथ ताल्लुक हो जाए, वो इंतहाई दर्जे का खुश नसीब इंसान है, इंतहाई दर्जे का खुश नसीब इंसान है। क्यों? वजह क्या है? उसको वो नियमतें मिलेंगी जो दूसरा सोच भी नहीं सकता, जिसको ये चीज़ हासिल नहीं हो, जो सोच भी नहीं सकता। हाँ जी, उसकी वजह यह है कि देने वाली ज़ात तो अल्लाह है, अल्लाह की है, देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह पाक किसी ज़र्फ में देते ना, जैसे आप किसी कोई चीज़ लेते हैं तो इसके लिए कोई बर्तन तो आपके पास होगा ना, बर्तन नहीं होगा तो आप उसको किस चीज़ में डालेंगे, ज़र्फ के ज़रिए से देते ना। तो अब ये जो किसी का शेख के साथ जब ताल्लुक हो जाए, उसको ज़र्फ मिल गया, ज़र्फ मिल गया, लिहाजा जो है ना, मतलब उस चीज़ को कंटेन कर सकता है, लिहाजा माशाल्लाह अल्लाह पाक उसको देता रहेगा और उसको मिलता रहेगा, वो बचत होगी। क्यों? वजह क्या है? अगर एक इंसान किसी शेख के साथ नहीं है तो जितना जितना काम करेगा उसके अपने खाते में डालेगा कि मेरी वजह से हुआ ये, मेरी वजह, मैंने किया, मैंने किया, ये मैं उसको तबाह कर देगा। जैसे बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ने फरमाया था, किसी ने कहा था कि हजरत कमाल है, जो अमाल आप करते हैं हम भी वही अमाल करते हैं, उसे नमाज आप पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, हाँ जी, जिक्र करते हैं, तिलावत करते हैं, ये सारे काम तो हम भी करते हैं, लेकिन आप और हम हमें, ऐसा क्यों है? मुश्किल सवाल था। अगर हम जैसे लोगों से किया जाता तो हम तो इसके जवाब ही नहीं दे सकते। हजरत ने दो लफ्जों में जवाब दिया है, फरमाई इसलिए कि तुम जो कमाते हो, तुम जो करते हो, तुम्हारा नफ्स कहा जाता है, तुम्हारा नफ्स कहा जाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी का कोई शेख नहीं है तो जो भी करता है तो उसका अपने खाते में डालता है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, काम खराब हो गया, काम खराब। हिजाब खुद इंसान अपना अपने आप का हिजाब है, हाँ जी। तो इस वजह से इंसान, लेकिन जब किसी वक्त किसी शेख के हाथ में हाथ देता है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका ये हिजाब दूर हो जाता है। जिसने वाकई किसी शेख से बैत कर ली, दिल से बैत कर ली, वो उसका हिजाब उसी वक्त खत्म हो गया। अब वो अपने किसी चीज की तरफ ये बात नहीं करे कि मैंने ये काम किया, बल्कि कहे सिलसिले की बरकत है, शेख की बरकत है, ये अल्लाह पाक ने नसीब फरमाई, अल्लाह पाक। अब वो जितना भी अपनी चीजों के बारे में कहेगा और उसका नजर अल्लाह पर है और शेख पर है, सिलसिले पर है, उसको कोई परवाह नहीं, कोई मुश्किल नहीं, वो सारा महफूज है, क्योंकि उसको अपनी तरफ तो इसकी नस्बत ही नहीं कर रहा, वो सारा महफूज है। और अगर ये नहीं तो बहुत खतरा है, बहुत खतरा है, अल्लाह तआला बचाए। तो यहाँ पर ये कि फिर तू दुनिया में दर बदर नहीं फिरेगा, फिर तुझे हिदायत माशाल्लाह उसी जगह से ही मिलती रहेगी। और वाकईतन हमने देखा है, चूंकि अल्लाह पाक ने शेख को जरिया बनाया होता है, और हजरत वो जो है ना, वो दे दो वो जो दादो सलूक, मैं आपको सुनाता हूँ हजरत गंगूई रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ। हजरत मौलाना शब्द गंगूई रहमतुल्लाह अलैह, ये वो बुजुर्ग है और बहुत बड़े आलिम, हजरत हाजी साहब का खलीफा। उनका सूफी होना लोगों पे इतना नहीं खुला जितना कि उसका आलिम होना खुला है। ये उनके फतावा, उनके इलमी बातें बहुत बड़ी माशाल्लाह जो है ना, मतलब ये कि वो उनको नस्बत हासिल थी, तो इस वजह से उनका लोग बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, बहरहाल
तू जाने उसको वो भी तुझको जाने, तू जाने उसको वो भी तुझको जाने। मुयस्सर तुझे को फिर उसकी नजर हो।
जितना अरसा आप अपने शेख के साथ राबते में रहेंगे तो आपका उसके बारे में इलम बढ़ता जाएगा, यकीनन चीज़ें खुलेंगी, आपका इलम उसके बारे में बढ़ता जाएगा। और साथ साथ शुक्रिया, और साथ साथ जो है आपका बारे आपके बारे में उनको मालूमात होती रहेंगी, आप अपने हवाल बताते रहेंगे लिहाजा उनको मालूमात होती रहेंगी आपके बारे में। ये बिल्कुल ऐसे जैसे किसी का कोई फैमिली डॉक्टर हो, तो अब वो चूंकि सारे चीज़ों के बारे में उसके पास जाता है और हर बात उसको जो मतलब जो अपने हवाल सुनाता है, तो डॉक्टर का एक्सपीरियंस उस शख्स के बारे में बढ़ता रहता है। क्यों डॉक्टर साहब? फिर एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि डॉक्टर को आपके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है कि आपके गुज़श्ता मौजूदा बीमारियों से, तबीयतों से, पसंदीदा नापसंदीदा चीज़ों से, कमज़ोरियों से वाकिफ़ हो जाता है। उस वक़्त आपका उसके पास आने ही काफ़ी होता है, वो आपके चेहरे को देख कर बता देते हैं भाई क्या मसला है आपको, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस उसको हो जाता है कि वो फिर उसके बारे में वो बाकी लोग रिसर्च करेंगे, टेस्टें करेंगे, उनको बगैर टेस्टों के बहुत सारी चीज़ों का पता चलता रहेगा। तो इसी तरीके से अगर शेख के साथ किसी का राबेता मुसलसल हो तो वो उसके बारे में जानता है, ये उसके बारे में जानना शुरू हो जाता है, एक दूसरे से अच्छी तरह वाकिफ हो जाते हैं, नतीजतन फिर कहते हैं मुयसर तुझको फिर उसकी नज़र हो। आजकल लोग कहते हैं जी बस कुछ नज़र फरमा दें, हमारे तरफ नज़र कर ले, ये आप कुंजी आपके हाथ में है, ये कुंजी आपके हाथ में है, ये उसके पास नहीं है, ये तेरी हाथ में अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। तू जितना अपने आप को उसके सामने खोलता जाएगा उतना उतना उसकी नज़र आपकी तरफ होती जाएगी, उतने उतने उधर से आपके लिए रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ जी, नतीजतन आपका काम होता जाएगा, जिसको लोग नज़र कहते हैं। लेकिन अब तो ये कहते हैं नहीं मैंने कुछ नहीं करना, बस मुफ्त में सारा कुछ हो जाए, तो अल्लाह पाक के कानून ही ऐसा नहीं है। हाँ जी, अल्लाह ताला का कानून तो ऐसे वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कोशिश पहले है, हिदायत का रास्ता बाद में खुलता है। समझ में आ गई ना बात? यानी पहले कोशिश का जिक्र है, फिर उसके बाद हिदायत का रास्ता खुलता है। वाह जी वाह।
फनाफ़ शेख का रुतबा अगर हो, दुआ में उसे की शामिल तू रहे फिर, दुआ में उसे की शामिल तू रहे फिर, तुझे रस्ते का ना फिर खौफ़ो डर हो। फनाफ़ शेख का रुतबा अगर हो,
दुआ में उसकी तू शामिल रहे, ये बड़ी अजीब बात है। दुआ का अमूमन जो लोग समझते हैं वो इस तरह समझते हैं कि हाथ उठाए जाएंगे, कुछ कलमात पढ़े जाएंगे, इसको लोग दुआ कहते हैं। ये बात सही है, ये भी दुआ है, ये दुआ के आदाब में से। लेकिन माँ है, अपने बच्चे को गिरता देख रही है, उसकी ज़ुबान से बेख्तियार निकलता है या अल्लाह खैर, क्या उसने हाथ उठाए थे उस वक्त? आया ये दुआ बहुत पावरफुल है या जो हम हाथ उठा दुआ करते हैं? बताएं कौन सी दुआ पावरफुल है? क्योंकि उसका पूरा दिल उस तरफ है, पूरा दिल उस तरफ है, तो वो दुआ तो सुभान अल्लाह कहाँ कहाँ पहुँच जाती है। हाँ जी, तो अब ये बाज़ दफ़े ऐसा होता है कि वहाँ हाथ नहीं उठाए जाते, بلکہ الفاظ بھی نہیں ہوتے، کمال کی بات ہے، الفاظ بھی غائب ہو جاتے ہیں، بس ایک اللہ کے طرف ایک تعلق ہوتا ہے مانگنے کا کسی کے لیے. یعنی گویا کہ دل کا ایک رخ اللہ کی طرف ہے اور ایک رخ اس شخص کے لیے جس کے لیے دعا کر رہا ہے. اس کو کہتے توجہ. سمجھ میں آئی نا بات؟ توجہ کو ہمارے شیخ فرماتے تھے قلبی دعا کو توجہ کہتے، قلبی دعا کو توجہ کہتے. یعنی انسان دل سے کوئی چیز مانگے اللہ تعالیٰ سے تو یہ اصل توجہ ہے، ورنہ جو دوسری توجہات ہیں وہ اس توجہ میں نہیں آتی. وہ تو اپنا ٹزم میں آتی ہے، کوئی اس قسم کی چیزوں میں آتی ہے، وہ کوئی اور چیزیں ہیں، اصل توجہ یہ ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اس کا تو سارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ دوسری چیزوں کی طرف کیوں جائے گا؟ ہاں جی، تو وہ اللہ پاک سے مانگتا ہے اپنے اس مرید کے لیے، اس میں الفاظ بھی نہیں ہوتے. تو جیسے میں نے کہا کہ ماں کے وہ دعا جو بچے کے لیے گرتے وقت وہ کر رہی ہے، وہ دعا اس کے لیے ظاہر مطلب الفاظ تو ہیں یا اللہ خیر، لیکن شیخ کے اپنے مرید کے لیے وہ دعا جو کسی وقت وہ کرتا ہے، یہ توجہ ہوتی ہے، یہ توجہ ہوتی ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا، ہمارے کتاب ایک لکھی گئی ہے ارواح ثلاثہ، حضرت تھانوی رحمۃ صاحب کے وقت میں لکھی گئی تھی، حضرت کو اس پر بڑی خوشی ہوئی تھی. اس میں واقعہ ہے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، حضرت کی خدمت میں بھی ہوتے تھے، طالب علم تھا، طالب علموں میں ہر قسم کے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں، آخر نوجوانی کا زمانہ ہوتا ہے، درمیان میں گڑبڑ بھی ہو جاتی. تو اس کی کس لڑکی کے ساتھ تعلقات تھے، اب ان کا آپس میں رابطہ ہو گیا تھا، ایک خاص موقع پہ رات کے وقت ان کو ملنا تھا. حضرت کو ملے زار پیر دبا کے ملے جو نے سلا دیا اور خود وہاں سے نکل گئے اپنی پروجیکٹ پہ. خدا کی شان کہ جیسے وہ لڑکی ادھر سے آئی اور یہ ادھر سے گیا، تو اس وقت بادل زور سے گرجے، اتنے زور سے گرجے کہ دونوں ڈر گئے، اور لڑکی بھاگی گھر کی طرف اور یہ آیا فوراً حضرت کی طرف، تو دیکھا کہ حضرت چارپائی پہ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں مراقب. اور جب اس کے آتے ہوئے دیکھا تو پھر حضرت دوبارہ سو گئے. اب یہ کیا چیز ہے، کیا چیز ہے؟ یہی وہ توجہ ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ یہی وہ توجہ ہے. حضرت نے ماشاء اللہ الحمدللہ اس کے لیے وہ ہے. تو الحمدللہ جن یہ اصل میں بات ہے، دعا میں اس کی پھر تو شامل رہے، یہ اس قسم کی دعا کی بات کر رہا ہے. لیکن اس کے لیے مرید کی طرف سے ہوتا ہے توجہ پہلی شیخ کی طرف، اور پھر پیر کی طرف سے توجہ ہوتی ہے اس قسم کی مرید کی طرف. اگر مرید کی طرف سے وہ توجہ شروع نہیں ہوئی تو پیر کی طرف سے وہ توجہ اکثر شروع نہیں ہوتی. سمجھ میں آئی نا بات؟ اور تو چوڑے اولیاء اللہ کی جو اولاد ہے، اولیاء اللہ دنیا سے تشریف لے بھی جاتے ہیں لیکن ان کو اپنے اولاد کے لیے ان کو فکر، اپنے اولاد کو فکر ہوتی ہے. ان کی جو اولاد ہے ان کو بھی تب ملتا ہے جب وہ ان کے راستے پہ چلنے لگتے ہیں. سمجھ میں آئی نا بات؟ اب جب ان کے راستے پہ چلنے لگتے وہ ساری چیزیں ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں، وہ چیزیں دبی ہوئی تھی وہ ساری کی چیزیں ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں، نتیجتاً وہ سارے کے سارے نظام چل پڑتا ہے اور پھر اللہ کی طرف سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. مختلف طریقوں سے چلتا ہے، وہ اللہ پاک کے ہاں کر طریقوں کی کمی تو نہیں ہے. ہاں جی، جس ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو فیض پہنچانا چاہے تو اس کے ذریعے سے اس ذریعے سے اس کو فیض پہنچا رہے. لیکن بہرحال انسان کو کوشش خود کرنی پڑتی.
پھر اسے کا قلب تیرا मुक्तदा हो, फिर उसका कल्ब तेरा मुक्तदा हो, वसीला तेरा फिर उसे कहीं दर हो, फनाफ़ शेख में फनाफ़ शेख का रुतबा अगर हो, खुदा ही देता है सबको यकीनन, खुदा ही देता है सबको यकीनन, मिलाने के लिए कोई मगर हो, फनाफिशे।
देखें, यानी इसमें जरिया को अगर आप वसीला कह दें तो उसमें कोई कन्फ्यूजन रह जाती है, क्योंकि असबाब की दुनिया है, असबाब के ज़रिए से काम होते हैं, चलते हैं, अल्लाह ने जो असबाब पैदा किए उनका ख्याल रखना, ये अल्लाह पाक चाहते हैं। तो अब जब ये वाली बात समझ में आ गई तो जिस जरिए से आपको दिया जा रहा है वो आपका वसीला है, जिस जरिए से है, जो गेट आपके लिए खुल गया तो उस गेट के सामने आप, उस गेट के गेट के अंदर आपने जाना होगा, जो खिड़की आपके लिए खुल गई तो उस खिड़की से आपको लेना होगा। मुझे बताओ, आप किसी एम्बेसी में जाते हैं वीज़ा वगैरह की एप्लीकेशन के लिए तो हर चीज़ के लिए अपनी अपनी खिड़की होती है, जैसे सऊदी एम्बेसी है तो हज उम्र वालों के लिए अपनी खिड़की होती है, जो काम वाले होते हैं उनकी अपनी खिड़की होती है। अब जो हज उम्र के लिए जाते हैं वो कड़ा हो जाए, मतलब वो काम वालों की खिड़की में, तो उसको मिलेगा वहाँ से? वहाँ से तो नहीं मिलेगा, उनको कहा जाओ उस लाइन में चलो। अब अगर देर से चला गया तो क्या हो जाएगा, वो उसके उस लाइन के आखिर में खड़ा होगा, उसको जब भेजेंगे तो आखिर में खड़ा होगा ना। अब अगर वो पहले से समझ आ गया और वो उसको पहले लाइन, तो उसका नंबर जल्दी आ जाएगा। तो अब यहां पर ये वाली बात है कि बात तो वही है कि देता तो अल्लाह है लेकिन कोई मिलाने वाला तो आपके वीजा के ऊपर साइंस तो ना, वो साइन तो करेगा काउंसलर या एम्बेसडर, तो खैर उस सिलसिले में नहीं, तो काउंसलर ही रहता है। हाँ जी, लेकिन वो जो खिड़की में बैठा है उसके बगैर आप जा सकते हैं? हाँ जी, मतलब वो तो जाहिर है, मतलब प्रोसेस तो वो होगा ना, तो उस प्रोसेस के लिए तो आपको जाना होगा। तो यहां पर खुदा ही देता है सबको यकीन। हाँ जी, मिलाने के लिए कोई मगर हो,
एक का रुतबा अगर हो, ये दिल से दिल को मिलने का है रास्ता, ये दिल से दिल को मिलने का है रास्ता, तेरे सामने अगर नूर का सफर हो, फनाफ़ शेख का रुतबा अगर हो।
अल्लाह अकबर, अजीब शेर है, इसमें क्या समंदर समाया गया है। दिल से दिल को मिलने का रास्ता, यानी असल बात यह है कि हुआ क्या है, देता तो अल्लाह है। अल्लाह जल्ल शानु ने आप सब के कल्ब अथर पर अपना फैज जारी फरमाया, फिर आप सब के कल्ब मुबारक से जो कोई सहाबी था उस पे हुआ, फिर उस साबी से ताबी के कल पर हुआ, फिर उधर से, फिर उधर से, फिर उधर से, होते 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 हमारे शेख तक पहुंच गया, और फिर हमारे शेख साहब तक पहुंच गया। तो इस फेस को अगर आप नूर समझ लें, नूर की तरह, जैसे नूर, तो मतलब उसको नूर समझ लें, और ये कुलूब के जरिए से ट्रांसफर हो रहा है, कुलूब के जरिए से ट्रांसफर हो रहा है, आप सब के कल मुबारक से, फिर साबी के, फिर साबी के उस पर, फिर इसके बाद फिर उस कुलूब के जरिए। तो फरमाया ये दिल से दिल को मिलने का है रास्ता, तेरे सामने अगर नूर का सफर हो, ये सिलसिले में जो नूर का सफर चल रहा है, अगर आपके सामने ऐसा हो। हजरत मुजद्दिद अफसानी रहमतुल्लाह अलैह की जो मुराकबात है, उसमें मुराकबा अहदियत यही चीज़ है, मुराकबा अहदियत बिल्कुल यही चीज है। हजरत ने इस के यानी जिसको कहते हैं इसके इस्तेहजार को हासिल करने के लिए कि इंसान के साथ पसा को ये पता हो, ये मुराकबा हमें दिया है, मुराकबा हदीयत, जिसमें हम कहते हैं कि अल्लाह जल्ल शान हो, जैसे कि उसकी शान है, उसका फैज़ आ रहा है आप सम के कल्ब अतहर की तरफ, और आप सम के कल्ब अतहर से मेरे शेख के दिल पर आता है, और मेरे शेख के दिल से मेरे दिल में आता है। फिर इस तरह जब ये हो जाए, फिर इसके बाद मेरे शेख के दिल से मेरे लतीफ़ रूह पे आता है, फिर जब ये हो जाए तो फिर हम कहते हैं मेरे शेख के दिल से लतीफ़ सिर पे आता है, गोया कि अपने पूरे जिस्म के जितने भी लताइफ हैं उनकी तरफ हम बाकायदा, ताकि हमें अच्छी तरह इंतज़ार हो जाए कि फैज़ किस तरह आता है, और हमें इसका मालूम हो, पता चलता हो। तो उसमें यह कि ये जो मुराकबा हदीयत है, ये आगे जाकर बाकी मुराकबात के लिए बेस बनता है। पहले मुराकबात के जरिए से लताइफ को एक्टिवेट किया जाता है जिक्र के जरिए से, फिर उसके बाद मुराकबा हदीयत से फेस का इजरा होता है, और फिर तीसरे दौर में हर हर लतीफे के साथ जो मशरब लगा हुआ है, यानी जो कैफियत हासिल करना है, जो इलम को हाल के दर्जे में तब्दील करना है, काल रा बेगजार मर्द हाल शो पेश मर्दे कामिले पामाल शो, यानी काल को हाल में बदलना। अब फ़ालमा उरीद, अल्लाह पाक सब कुछ करता है, ये इलम है, काल है, ये इलम है, काल है, कुरान में है, हम मानते हैं, हमारे इस पर ईमान है, लेकिन काल है। जिस वक़्त ये मुराकबा इंसान करता है और आदमी को बिल्कुल नजर आता है कि अल्लाह सब कुछ करता है, ये हाल है, समझ में आ गई ना बात, महसूस होता है कि अल्लाह पाक सब कुछ करता है, सब कुछ तो अल्लाह ही करता है। तो जिसको हाल के दर्जे में हासिल हो गया, उसका यकीन बन जाता है, उसका यकीन बन जाता है, और जिसका यकीन बन जाता है फिर उसके आमाल उसके मुताबिक हो जाते हैं, इसके अमाल उसके अमाल इसके मुताबिक हो जाते हैं, और जब अमाल उसके मुताबिक हो जाते हैं वो कबूल भी हो जाते हैं, समझ में आ गई ना बात। अब कितने ज़बरदस्त निज़ाम है हजरत ने इस, कितने ज़बरदस्त निज़ाम, लेकिन चूंकि लोग इन चीज़ों को जानते नहीं तो समझते पता नहीं क्या चीज़ है। वैसा हुआ, मैं अपने जो उस्ताद थे मेरे मैथमेटिक्स के, उसको मैंने कहा कि सर ये मैट्रिसेस किस लिए आप पढ़ाते हैं, यानी कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो उसने मुझे किताब दे दी कंट्रोल सिस्टम का, इसको ज़रा पढ़ के देखो क्या है इसके अंदर। जब मैंने वो किताब वर्गर्दान की तो पता चला कि हर जगह मैट्रिसेस मैट्रिसेस, हर चीज़ में मैट्रिसेस मैट्रिसेस इस्तेमाल मैट्रिसेस इस्तेमाल होते हैं। मैंने कहा समझ गया समझ गया। अब जब ये चीज़ है कि हम लोग ये मुराकबात करते हैं लेकिन उसका वजह मालूम ना हो कि हम किस लिए मुराकबात करते हैं, तो समझते कि पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन जिस वक्त हमें मालूम हो जाएगा कि ये मुराकबात किस लिए करते हैं, फिर सुभान अल्लाह इसका शरसदर हो जाता है। हाँ जी, फिर यूं कह सकते हैं कि हम इसको अपने लिए ज़रूरी और अहम समझने लगते हैं, फिर उसके मुताबिक फिर हम करने लगते हैं, उसके मुताबिक फिर हमें असर भी हो जाना शुरू हो जाता है। तो यही असल में बुनियादी बात है। तो ये मैंने अर्ज़ किया ना, ये दिल से दिल को मिलने का है रास्ता, तेरे सामने अगर नूर का सफर हो, ये ज़रा हज़रत मुजद्दद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यकसुई को के लिए दरमियान के कुछ चीज़ों को नहीं हमारे सामने किया, क्योंकि फिर मुंतशिर हो जाता है जहन, जब ज़्यादा चीज़ों की तरफ इंसान का तवज्जो तो फिर मुंतशिर हो जाता है। वरना असल में मुराकबा हदीयत क्या है? अल्लाह जल्ल शानो की कफे जैसा कि उसकी शान है आप सजम के कल्बे अतहर पर। फिर वहाँ से जिनको मतलब जा रहे उन्हें इजाज़त दी है, यानी जो बाद में उनसे उनके फिर उनके फिर उनके फिर उनके फिर उनके और होते होते सारे सिलसिले से होते हुए शेख तक, और फिर शेख से, मतलब असल तो यही है, असल तो यही है। लेकिन वो तमाम चीज़ों का सोचना ये जहन को मुंतशिर कर लेता है। तो हज़रत ने फिर इसी पर इक्तफा फरमाया कि अल्लाह जल्ल शानु से आप सल्लम के कल्ब, और आप सल्लम के कल्ब से शेख के कल्ब पर, और शेख के कल्ब से मेरे कल्ब पर याद आए।
नबी के लफ्ज हम तक जैसे पहुंचे, नबी के लफ्ज हम तक जैसे पहुंचे, तू उसमें जोर सारा रावी पर हो, तो उसमें जोर सारा रावी पर हो, फना फिर शेख का रुतबा अगर हो, तो शेख के कल्ब का तुझ पर असर हो। नबी का नूर कल्ब भी दिल से दिल को मिला, नबी का नूर कल्ब भी दिल से दिल को मिला, सोहबत पे ही ये मुनहसर हो, फना फिर शेख का रुतबा अगर।
ये जो बाकी जो दो शेर हैं जो इसके बाद आए हैं, वो असल में पहले शेर की तशरीह है, जो अभी यानी ये दिल से दिल को मिलने का है रास्ता, तो इसमें जोर सारा रावी पर हो। इसमें गोया कि इतनी तेरे सामने अगर नूर का सफ़र हो, तो इसमें यह है कि इसको साबित करने के लिए या उसको जाहिर करने के लिए एक बहुत अहम चीज़ जो हम पहले से जानते हैं, इस शेर में इसका जिक्र किया गया है कि हदीस शरीफ की जो रिवायत है वो आप सल्लम के गोया के अल्फाज मुबारक का सफ़र है, और वो अल्फाज मुबारक रावी के ज़रिए से हम तक पहुँचते हैं, रावी के ज़रिए से हम पहुँचते हैं। अब मतन असल में तो असल है, लेकिन उसमें ताकत आती है रावी के ज़रिए से, ताकत के ताकत अगर वो सारे रावी सिक्का हो तो हदीस शरीफ सही बन जाती है, और अगर रावी दरमियान में कोई कमज़ोर आ गया तो सारी रवायत कमज़ोर हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कल्ब का नूर है, वो जो आप तक पहुंच रहा है, वो भी इस पर मुनहसर है कि सोबत हुई या नहीं हुई, सोबत हासिल थी या नहीं थी, वो सोबत के जरिए से आप तक मिलती है। हाँ जी, तो आप मतलब जो अब तक चला आया वो तो सोबत चली आ रही है, अब आपकी सोबत कितनी है तो आपको कितनी मिलेगी, समझ में आ गई ना बात? है जितनी सोबत उनकी थी उनके जरिए से तो पहुंच गई, मतलब यहां तक तो पहुंच गई, आगे आप तक पहुंचनी है तो आपकी सोबत कितनी है उसी के हिसाब से मतलब उसके अंदर कुव्वत आएगी, समझ में आ गई ना बात? तो यहां पर सो मतलब नबी का नूर कल्बी दिल से दिल को मिला, सोबत पे ही ये मुनहसर हो। हाँ जी, आखिरी शेर
हो तो शेख के कल्बे का तुझे पर असर हो, शब्बीर उस नूर के पाने के वास्ते, शब्बीर उस नूर के पाने के वास्ते, फना फिशेख रहो के खूब तर हो, फना फिशेख का रुतबा अगर हो, तो शेख के कल्ब का तुझ पर असर हो।
तो आपको अंदाज़ा हो गया कि शेख की सोहबत कितनी ज़रूरी है, मतलब इससे आपको पता चला। अब ये पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी पे रुकना तो नहीं है, हाँ जी। दूसरी सीढ़ी फनाफिर रसूल का होना है। तो फनाफिर रसूल इंसान कैसे होता है और उसके साथ क्या होते हैं, इसके लिए दूसरा कलाम है, वो भी इंशाल्लाह।
उन्वान है फनाफिर रसूल, जो शेख इत्तिबा में सुन्नत की मशगूल हो, उसको ही देखते देखते फनाफिर रसूल हो। ये रुतबाए बुलंद मिला जिसको मिल गया, ये रुतबाए बुलंद मिला जिसको मिल गया, सालिक का हर अमल फिर खुदा को कबूल हो, उसको ही देखते देखते फनाफिल रसूल हो। महबूबियत खुदा की जब सुन्नत में है पनहा, महबूबियत खुदा की जब सुन्नत में है पनहा, रहमत का दिल पे उससे न फिर क्यों नुजूल हो, उसको ही देखते देखते फनाफिल रसूल हो।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन है, अल्लाह पाक गवाह है, अल्लाह पाक फरमाते हैं मा अरसलना का इल्ला रहमतुल्लिल आलमीन। अब इस सिफत रहमतुल आलमीन से हम कैसे फ़ायदा उठाएंगे, इसके दो किस्म के फ़ायदे हैं। एक तो वो फ़ायदे हैं तकवीनी और तशरीही, जो मतलब सूरज की तरह है, यानी सूरज से जिस तरह शुआएं निकलती हैं और वो हर तरफ जाती हैं, उसके लिए अगर हिजाब ना हो, उसके लिए अगर हिजाब ना हो तो वो हर की तरफ जाती है, हर एक उससे फैज़ हासिल कर सकता है अगर हिजाब ना हो। जैसे ये पर्दे हैं, अब सूरज इधर चमक रहा है, ये हिजाब है, जब तक ये पर्दे होंगे तो नहीं आएगा सूरज की रोशनी, लेकिन जब इन पर्दों को हम हटा देंगे तो सूरज की रोशनी आने लगी। तो सूरज की रोशनी तो आ रही थी लेकिन उधर रुक रही थी। तो इसी तरीके से हिजाबात का जो सिलसिला है उसको दूर करना होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर का जो फैज़ है, वो जो आ रहा है, अगर हमारे दिल में हिजाबात होंगे तो उसकी वजह से वो रुक सकते हैं, हाँ जी, ये बात सही है। तो अब इन हिजाबात को दूर करने के लिए हमें तरीकत इख्तियार करना पड़ता है, तरीकत इख्तियार करना पड़ता है इन हिजाबात को दूर करने के लिए। तो उसके लिए फिर ज़ारे शेख के साथ राबता होता है, तो गोया कि वो ज़रिया बन जाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस नूर को हासिल करने के लिए। दूसरी बात है कि आप सब के सुन्नतों पर जब इस वक्त आप चलते हैं, तो सुन्नत बजात खुद گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. جتنے جتنے سنتوں پہ آپ چلیں گے اتنے اتنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملتی یا فیض ملتا جائے گا. وہ جو چیز سنتوں کے ساتھ ہے وہ آپ, تو اب یہ جو بات ہے دونوں, یعنی ایک یوں سمجھ لیجئے کہ آپ عمل کریں گے تو وہ عمل چاہے کسی طریقے سے بھی کوئی کرے گا تو اس کو اس کا فائدہ ہوگا. دوسرا یہ کہ اگر حجابات کی وجہ سے رکاوٹ ہے تو حجابات کو دور کرے گا تو ظاہر مطلب وہ فیض کامل ہوتا جائے گا. یہ دو باتیں اس میں ضروری تھی.
خوشنودیے خدا کا یہ رستہ جسے ملے, خوشنودیے خدا کا یہ رستہ جسے ملے اس کی نظر میں بدعتیں رستے کا دھول ہو, اس کو ہی دیکھتے دیکھتے فنا فی الرسول ہو. سنت میں جذب,
یہ اصل میں اللہ جل شانو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پیاری ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس وجہ سے جس کو یہ نسبت مل جائے کیا پھر کبھی بدعت کی طرف وہ دیکھ سکتا ہے؟ بدعت کا مطلب کیا ہے؟ گویا کہ میں نے اپنے طریقے کو سنت سے بہتر سمجھا, میں نے گویا کہ اپنے طریقے کو سنت سے بہتر سمجھا, حالانکہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا آدمی کہ میرا طریقہ کسی طریقے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہتر ہو جائے. تو لہٰذا جس کے اوپر یہ راستہ کھل گیا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا, تو پھر وہ بدعتوں سے بالکل بتکے گا اور گھبرائے گا, اس کی طرف سوچ بھی نہیں سکے گا, بلکہ پورے اہتمام کرے گا کہ کہیں کس طریقے سے اسے کوئی بدعت کا مطلب وہ نہ ہو, بندے صدور نہ ہو جائے.
قبول کے درجے میں ہے موجود, سنت میں جذب قبول کے درجے میں ہے موجود, ایک جست میں با خدا بنے شرک کا ظہول ہو.
یہ اتنا زبردست شعر ہے میں آپ کو کیا بتاؤں. یعنی دیکھیں اس میں یہ کہ سنت میں محبوبیت ہے خدا تعالیٰ کی, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اب جس وقت جب اس میں محبوبیت ہے تو یہ جذب ہے, مطلب یہ کہ مطلب وہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف کھینچ لے گا. اب جب اللہ تعالیٰ آپ کی طرف کھینچے گا تو ایک جذب میں ابا خدا بن سکتے ہیں, یعنی اللہ کا پیارا بن سکتے ہیں. جب اللہ کا پیارا بن جائے تو پھر شرک کیسے ہوگا؟ ہاں جی, تو شرک آپ سے ہٹ جائے گا. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے میں بدعت سے بھی حفاظت ہے اور شرک سے بھی حفاظت ہے. ہاں جی, ایک دفعہ میرے ساتھ ایسی بات ہوئی, اللہ اکبر, کسی نئی جگہ پہ میری پوسٹنگ ہوئی تھی, تو کچھ لوگ جو ظاہر بدعت میں مبتلا تھے ان کی مسجد میرے قریب تھی. میں اس چیز میں بڑا احتیاط کرتا تھا کہ کہیں اس طرح ایسی چیزوں میں نہ پڑوں, کوشش تھی میری. لیکن وہ چونکہ نئی نئی پوسٹنگ ہوئی تھی لہٰذا ہمت نہ ہو سکی کہ میں اس کے لیے کچھ اور سوچوں, تو میں وہاں جانے لگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشهد ان محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بن رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة صلى الله عليه وسلم. یہ دو شعر باقی ہے تو میں ذرا اس کو ہی کر لیتا ہوں کیونکہ پھر ٹائم تو ختم ہو گیا.
سنت میں جذب قبول کے درجے میں ہے موجود، سنت میں جذب قبول کے درجے میں ہے موجود، ایک جست میں با خدا بنے شرک کا ظہول ہو، ایک جست میں با خدا بنے شرک کا ظہول ہو، اس کو ہی دیکھتے دیکھتے فنا فی الرسول ہو، سنت کی اتباع کو کرو شیخ سے حاصل، سنت کی اتباع کو کرو شیخ سے حاصل، تو اولیاء کے گروہ میں تیرا شمول ہو، اس کو ہی دیکھتے دیکھتے فنا فی الرسول ہو، یہ جذب کو دعوت ہے تو ایک جست میں شبیر، یہ جذب کو دعوت ہے تو ایک جست میں شبیر، سالک کا تے ایک آن میں رستے کا طول फूल हो, उसको ही देखते देखते फना फिर रसूल हो, उसको ही देखते देखते फना फिर रसूल हो, जो शेख इत्तेबा में सुन्नत की मशगूल हो, उसको ही देखते देखते फना फिर रसूल हो।
इंशाल्लाह अगली दफ़ा में फना फिल्लाह बहुत अहम, जिन तमाम का मतलब जो जो हासिल करना होता है इन तमाम से, वो इंशाल्लाह यानी इसकी तशरीह होगी। अभी मैं हज़रत मौलाना शाह गंगूर रहमतुल्लाह अलैह के उस मलफूज जो हज़रत की किताब है इरशादुस्सुलूक यानी इमदादुस्सुलूक, उर्दू तर्जुमा उसका इरशादुस्सुलूक है, वो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। तौहीदी मतलब के उनवान से है, तौहीदी मतलब से ये मुराद है कि जान ले कि इस ख़ास पीर के सिवा जो अपना शेख है, जो मस्कूरा बाला सिफात से मौसूफ है, दुनिया में कोई मेरा मतलब पूरा नहीं कर सकता, अगरचे और भी पीर उसके मसर मौजूद हो और सिफात से मौसूफ हो। तरीक़त का ये बड़ा अहम रुकन है, अगर तौहीद मतलब हासिल नहीं तो परागंदा और हर जाई रहेगा और हमेशा तशवीश में रहेगा, खुदा भी उसकी परवाह नहीं करेगा किस सहारा में हलाक हुआ, खुदा भी इसकी परवाह नहीं करेगा कि किस सहारा में हलाक हुआ, बल्कि जिस तरह हक ताला एक है और किबला एक है, इस तरह अपने रहबर पीर को भी एक ही जाने। बहुत से लोग इस परागंदगी में हलाक हो चुके हैं, बस अगर ये ख़तरा भी दिल में गुजरे कि उस शेख के अलावा भी कोई मेरा मतलब पूरा कर सकता है, तो शैतान इसमें तसरफ कर रहा है और उमदा जगह से निकाल रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि शैतान उसके यानी वो दूसरे पीर के सूरत में आकर उसको ख़राब करते और ऐसी चीज़ें उसको दिखाता है कि इसका अकीदा बातिल, उसकी वजह यह अभी आगे बताते हैं। तौहीदी मतलब की वजह से शैतान को रास्ता नहीं मिलता और उसके पीर की शक्ल में नहीं शक्ल में नहीं आ सकता, इसलिए कि आप सबने शेख को अपने मुरीदों में मिसल नबी के अपने कौम में फरमाया और अपनी उम्मत के उलमा को मिसल अंबिया बनी इसराइल बताया। लिहाजा जिस तरह शैतान मरदूद हुजूर फ़ख्र वसल्लम की शक्ल में नहीं आ सकता, जैसे कि आप सल्लम खुद फरमाते हैं कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे वाकई देखा, क्योंकि शैतान मेरे सूरत में हरगिज़ नहीं आ सकता, इस तरह वो ताबे शरीयत शेख की सूरत में भी इख्तियार नहीं कर सकता, इसलिए मुरीद महफूज रहता है। यानी अगर शेख वाकई शेख कामिल है और मशीकियत के तमाम उस पर कवायद पर पूरा उतरता है और उसके साथ अगर किसी ने बैत की हुई है, तो अब जो उसका वो शेख है उसको किसी हालत में भी ना छोड़े, क्योंकि जब उसको छोड़ेगा तो जिस किसी चूँकि दूसरे के लिए तो वो चीज़ नहीं है, प्रोविज़न नहीं है जो उस शेख के लिए, दूसरे के लिए तो वो प्रोविज़न नहीं है, लिहाजा दूसरे शेख के रंग में वो आ सकता है शैतान, तो ज़ाहिर धोखा दे सकता है, लेकिन अपने शेख के जो ना मतलब जो होता है उस सूरत में शैतान के ऊपर रास्ता बंद है, वो अपने शेख की सूरत में नहीं आ सकता। तो ये हज़रत ने जो माशाल्लाह बहुत बड़े आलिम है, ख़ुद हज़रत ने ये बात फरमाई है अपने मलफूज हज़रत का दूसरी जगह पर कि हज़रत ने फरमाया अगर एक मजलिस में जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ़ फरमाओ और मेरे शेख हज़रत हाजी साहब भी तशरीफ़ फरमाओ, हाजी इमदादुल्लाह मजलवकी रहमतुल्लाह, तो मैं तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ़ एक नज़र भी नहीं देखूँगा, मैं तो उनकी तरफ़ एक नज़र भी नहीं देखूँगा, क्योंकि हमारा शेख तो हाजी साहब है। हाँ हाजी साहब जो ना बुदाय की तरफ देखते रहे उनका शेख है, उनकी बात नहीं है, लेकिन मैं तो अपने शेख की तरफ देखूँ, ये हज़रत गंगूई रहमतुल्लाह अलैह की बात है, समझ में आ गई ना बात। तो ये असल में बुनियादी बातें, अगर किसी को ये चीज़ें क्लियर हों तो बहुत आसानी हो जाती है। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमा दे। वाखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब हम जिक्र करते हैं मुख्तसर सा और इसके बाद फिर इंशाल्लाह दुआ करेंगे। لا اله الا الله 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 لا
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. حق 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 حق. اللهم صل على سيدنا محمد. الله 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 اللہ 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 صلی علی محمد و علی محمد كما صليت على ابراهيم و علی ابراهيم انك حمید مجید اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين